ओम शांति, ओम शांति। सभी मधुबन की स्वर्गाश्रम की भूमि पर अनेक संकल्प लेकर के आए होंगे। ईश्वरीय जीवन वो तो हम सब ने धारण की है, लेकिन ईश्वरीय जीवन में भी सफल होते होते अनेक पड़ाव को पार करना होता है और अनेक बार जीवन की गति कभी थोड़ी शिथिल भी हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है। तो जब मधुबन भूमि पर आते हैं तो मन में एक संकल्प तो कॉमन सभी को शायद रहता ही है कि इस बार ऐसी शक्ति भर के आएंगे, ऐसा खजाना कुछ अपने में प्राप्त करके आएंगे, कुछ ऐसी प्रेरणा बाबा की मिल जाए कि जो ये जीवन में कभी कभी थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, कभी कभी मंजिल थोड़ी सी दूर नजर आती है, कठिन लगती है, बातें सुनते हैं बड़ों से बाबा की वाणी से, तो वो लक्ष्य कभी कभी बहुत ऊंचा नजर आता है और खुद को कुछ बौना सा महसूस करते हैं कि इतनी ऊंची बात और मैं आत्मा वर्तमान को देखूं तो मुझे असंभव सा कठिन सा कभी कभी जो लगता है। तो क्या हम भर के जाएं ऐसा, क्योंकि इस भूमि पर भगवान ने अवतरित होकर लाखों आत्माओं का भाग्य लिखा है, लिख रहे हैं। ये साधारण भूमि तो है नहीं। जितने भी संसार में देवी देवताएं पूजे जाते हैं उन सब ने यहां अपनी दिव्यता को प्राप्त यहां से किया है। सृष्टि रचयिता ने ब्रह्मा के द्वारा सर्व के भाग्य को इस भूमि पर लिखा है। हम उस भूमि पर हैं जहां हम भी अपना भाग्य बहुत बेहतर लिख कर जाएंगे। ये तो लक्ष्य है ना, ये संकल्प। बाबा कभी कभी मुरली में कहते थे, बच्चे पहाड़ी की हवा खाने नहीं आए हो। तो आते हैं, नए लोग आते हैं, यहाँ टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, लेकिन हम क्यों आए हैं? जीवन सरल हो जाए, इजी लगे पुरुषार्थ, ऐसी अपने अंदर एक टचिंग आ जाए। ये एक बहुत अच्छा संकल्प हम शुरू से जब मधुबन में आते तो ये रहता था, आज भी रहता है कि कुछ ऐसा पावरफुल बाबा की तरफ से मिल रहा है लेकिन हम रिसीव कर ले। वो तो दाता है, उसकी तो शक्तियां, वरदान, दुआएं, सहयोग, सकाश निरंतर वो दे रहा है। कमी किस तरफ है? उसके देने में तो कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था ना, देने वाला दे, इतना दे रहा है कि लेने वाला थक जाए। तो जो भी मेरे जीवन में जिस ऊंचाई को प्राप्त करने का मैंने इस ईश्वरीय जीवन में लक्ष्य लिया है, देखिए दुनिया को चैलेंज करके हम एक अलग राह पर चले हैं ना। किसी ने पुश नहीं किया हमको, हमने चुनी है ये राह, चैलेंज किया है, बहती धारा से विपरीत चलने का संकल्प है हमारा। तो हम खुद को बेहतर देखना चाहते हैं ना। अच्छा, जो लोग हमें देखते हैं, हमारे मित्र संबंधी, लौकिक में व्यवहार में जितने भी लोग होते हैं, पहचानते हैं आपको, उन्हें भी पता है कि आजकल ये आध्यात्मिक जीवन में है, तो वो भी बड़ा गौर से देखते हैं। और क्या देखना चाहते हैं? कि इनके अंदर क्या चेंज आ रहा है। कभी कभी आप को भी ध्यान ना हो, ऐसी बातें वो बताते हैं कि पहले आप ऐसे थे, अभी आजकल आप ऐसे हैं। ये वो लोग नोट करते हैं। अच्छा, चलते चलते अगर कोई थोड़ा सा रुक जाता है, ढीला हो जाता है ना, वो भी नोटेड होता है। किसी दिन अगर मुरली के टाइम आप घर पे दिखेंगे तो 3-4 लोग तो आपसे पूछ ही लेंगे, क्या बात है भाई जी, बहन जी, आज आप सत्संग में नहीं गए। वो याद दिलाते, उनको पता है इनका ये टाइम है। तो वो भी हमें देखते हैं। और क्या देखना चाहते हैं? कि इनकी उत्तरोत्तर परिवर्तन होके प्रगति हो। और जो हमें पढ़ा रहा है वो भी हम में रोज क्या देखना चाहता है? बाबा कहते हैं ना, तुम मेरे उम्मीदों के सितारे हो, आशा के चिराग हो। तो बाबा भी देखना चाहते हैं ना कि जो मैं इन आत्माओं को दे रहा हूं वो इनके कार्य व्यवहार में, इनके जीवन गति में, यात्रा में दिखाई दे। तो हम सब, परमात्मा का भी लक्ष्य है, लोग भी देख रहे हैं, हम भी खुद में बेहतरी, बेटरमेंट देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इस यात्रा में सबकी स्पीड अलग अलग है। वही मुरली, वही सूत्र हमें सबको मिलते हैं कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दोनों ही बातें मुरली में होती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कॉमन है मुरली भी सबके लिए, है ना माताएं, मुरली भी सबके लिए समान है। दादियों को बाबा ने अलग मुरली नहीं सुनाई, हमें भी आज तक वही सारी मुरलियां, ओरिजिनल बाबा के शब्द मिल रहे हैं। बल्कि बाबा तो कहते हैं, बच्चे जो पीछे आए हैं ना, उनको तो इतने साधन का भी सहयोग मिला है। पहले तो बाबा की आवाज दूर बैठे बच्चे थोड़े ना सुन पाते थे। टेप रिकॉर्डर जब पहली बार आया था तो बड़ा खुश होते थे जिनके पास टेप रिकॉर्डर होता था और बाबा की मुरली जो रिकॉर्ड होके मिलती थी और उसमें डाल के जब सुनी जाती थी। अभी तो हर महारथी की क्लास भी 69 से लेकर चली हुई सारी मुरली के वीडियोस आपके पास जब चाहिए जितनी बार सुनना चाहें अवेलेबल है। साधन खूब है, फिर भी हम सबकी यात्रा की स्पीड अलग अलग है, तो कमी किसकी तरफ से है? तो उस कमी को हम इस भूमि पर जहां स्वयं ब्रह्मा ने भाग्य विधाता ने अपना कार्य किया है वहां जब हम रहें तो अवश्य दूर कर सकते हैं। पहली बात, ये संकल्प बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, ब्रह्मा ने किया तो तुम बच्चे भी तो कर सकते हो। आई कैन डू, मैं कर सकती हूं, ये संकल्प मुझ में है, चेक कीजिए। कभी मुरली में कोई बात आती है तो हमें ऐसा तो नहीं लगता है कि ये तो शायद महारथियों के लिए है। सिंपली जैसे बाबा कहते, 8 घंटा मेरी याद में रहेंगे तो माला का दाना बनेंगे, तो बुद्धि में क्या संकल्प आता है? सच सच चेक करना, क्या संकल्प आता है? माला तो छोटी सी है और मैं तो बहुत लेट आई हूं, ऑलरेडी तब तक तो माला सिलेक्ट हो गई होगी, तो शायद ये सिलेबस मेरे लिए होता है। कभी कभी ऐसा, कभी कभी है ना, मुश्किल लगता है तो वो अज्ञान काल में सुनिए कहानी के अंगूर खट्टे हैं, वो ऐसे बोलते हैं और हम कह देते हैं कि वो तो बड़ों के लिए है, हमसे कहां। तो सबसे पहले तो ये कमजोर संकल्प कभी भी ना हो, मैं वो हर चीज जो ब्रह्मा ने की, जो ममा ने की, जो बाबा मुरलियों में कहते हैं, वो हर चीज मैं भी अवश्य कर सकती हूं। और ऐसे ही एक बार सोचने से नहीं होगा, बार बार अपने अंदर ये कीजिए। कहते हैं कि दुनिया का सबसे जीनियस पर्सन था आइंस्टीन, बहुत बड़े वैज्ञानिक। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ब्रेन का टेस्टिंग किया गया तो ये पाया गया कि इतना जीनियस होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ब्रेन की कैपेसिटी से केवल 10-12% ही यूज किया था, और आम व्यक्ति जीवन पर्यंत अपनी आंतरिक शक्तियों को 3-4% भी यूज नहीं करता, करता नहीं है, है। तो हमारे हरेक के पास वो पोटेंशियल, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो कैपेसिटी है। ये सबसे पहले हमें धारण करना है। बाबा रोज कहते हैं स्वमान, क्यों बाबा स्वमान देते हैं? कि मैं साधारण नहीं हूं, जो हमने युगों युगों से साधारण जीवन जीते जीते कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया कि हम एक साधारण सा संसार में पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन उसको अंदर से निकाल के मैं महान हूं, अपनी संभावनाओं को खुद तराशे, मुझ में बहुत संभावनाएं हैं, वो इतनी कई चीजें हैं जो मैं यूज करके महान बन सकता हूं, लेकिन चूंकि इसलिए कि मैं अभी तक उसको यूज नहीं कर रही हूं, कर रहा हूं, तो वो कुछ सूत्र हम धारण कर लें, कैसे बाबा जो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कुछ बातों का ध्यान रखें, तो अपने आप को महान समझना है, कभी भी साधारण नहीं। मुझे वो घड़ी याद आती, इसी हॉल में हम पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मिले, तो हम ग्रुप में सबसे छोटे मेंबर मैं थी, एट द एज ऑफ माय 11, 11 साल की एज थी, और जब बाबा से मिले तो दीदी हमारी परिचय कराती थी, तब तो ग्रुप को बहुत अच्छे से बाबा टाइम देते थे, तो परिचय ऐसा कराया गया कि ये हमारे ग्रुप की सबसे छोटी कन्या है बाबा, इसको आप दृष्टि टोली ऐसे। तो बाबा ने जब हाथ में टोली देते हुए दृष्टि दी, तो एक वरदान जो फर्स्ट इस आत्मा को मिला वो था, बच्चे बड़े तो बड़े, छोटे सुभानअल्लाह, कभी अपने को छोटा मत समझना। और ये बात स्वयं भगवान ने जब कही तो वो तो वरदान ही होता है, वो तो स्टैंप ही होता है, बट हम अगर याद नहीं रखें तो वो भी मिस हो जाता है। जो भक्ति में कहते हैं ना कि हनुमान को वरदान मिला था कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें याद नहीं था वो वरदान, भूल गए थे, तो जब उड़ने का टाइम आया, जरूरत पड़ी, तो जांबुवंत ने आकर के उसके कान में सुनाया, हनुमंत तुम उड़ सकते हो, तुम्हें वरदान प्राप्त है, और फिर वो उड़े, और फिर जो कहानी है वो सारी हम जानते हैं। तो ये किसकी यादगार है? हमें वो बात जो परमात्मा ने दी होती है उसे क्या करना होता है? स्वीकार कर लेना होता है। जो भी मुरली की बातें, जो भी पर्सनल आपको कभी बड़ों से मिला, कभी वरदान कार्ड में मिला, है ना, अलग अलग तरह से साल में कई बार हमें पर्सनल भी तो बहुत कुछ मिलता है, उसे क्या कर लेना है? स्वीकार कर लेना है, तब जाके हमारा अंतःकरण तैयार होता है। अक्सर क्या होता है कि हम डबल पर्सनालिटी में कभी कभी अपना बहुत ज्यादा एनर्जी खराब करते हैं। कैसे डबल पर्सनालिटी? कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम रूहानियत वाले हैं, ये हमें जरूर दिखाना है, लेकिन हमारे अंदर कोई युद्ध चल रही है, कोई कमजोरी लगातार चल रही है, कोई संकल्प विकल्प लगातार चल रहे हैं, हम उसका समाधान नहीं कर रहे हैं, तो हम बाहर से एकदम आए मौके वैसा चल रहे हैं कि मैं बाबा का बहुत अच्छा बच्चा हूं, और लेकिन अंदर युद्ध चल रही है। तो एक बाहर से दिखने में मेरी शक्ति जा रही है और एक अंदर लड़ने में, मन भी खाता है कभी, बाबा का बच्चा होते हुए भी मेरा ये विचार चलते हैं, मैं ये कर लेता हूं, कभी गुस्सा भी कर लेता हूं, कभी ये भी हो रहा है, वो गिल्टी भी अंदर, और वो अंदर अंदर ही, उसको निकालना नहीं जा रहा है, लेकिन बाहर से एकदम ओके हूं करके चल रहे हैं। ये जो डबल पर्सनालिटी, जैसे आप फोन यूज करते हैं ना, फोन में जितने फंक्शन एक साथ ज्यादा चालू होते हैं उतनी बैटरी ज्यादा जल्दी डल हो जाती है। चार्ज करने रखो और आपने मल्टीपल फंक्शन चालू रखे हैं तो चार्जिंग भी बहुत स्लो होगा। जब आप स्विच ऑफ कर दें, सब फंक्शन बंद कर दें, फिर चार्ज करें तो क्या होता है? फास्ट चार्ज हो जाता है। जितने ज्यादा द्वंद्व या पर्सनालिटीज को हम मेंटेन कर रहे हैं, कहीं बाहर गए तो वहां कुछ अलग तरह का हमारा व्यक्तित्व है, हम ज्ञानी जीवन में अलग तरह का व्यक्तित्व है, फिर हम अंदर में कुछ और फेस कर रहे हैं, ये सब जगह एनर्जी अगर जाती रही तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक बहुत अच्छा स्लोगन है, बी योर सेल्फ, जो हो वो बन के रहो, स्वीकार करो, वही बताओ जो आप हो। अंदर कुछ, बाहर कुछ नहीं। अगर मुझ में कुछ कमियां चल रही है तो बाबा ने कहा है, बच्चे बाबा को पत्र लिखो, बड़ों से वेरीफाई करो, जो आपसे पुराने हैं, जिन पर आपको फेथ है, जो आपकी सुनेंगे, आपको समाधान देंगे, वो आप समाधान कीजिए। लंबे समय तक वो चीज चलने मत दीजिए जो आपकी एनर्जी को खा रही हो, खत्म कर रही हो। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छा दिखने से अच्छा होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण दिखने से सच्चा ब्राह्मण बनना बहुत जरूरी है। सेवाधारी दिखने से सेवाधारी बनना ज्यादा जरूरी है। मैं सहयोगी हूं ऐसा दिखाई दे जरूरी नहीं है, पर सहयोगी होना बहुत जरूरी है। दुनिया सारी शो वर्ल्ड में जा गई, चली गई है। इतना सा भी कहीं दान करेंगे तो दिखाएंगे, इतना सा भी किसी को कुछ देंगे गिफ्ट तो दिखाएंगे। पहले कैसे सब कुछ गुप्त तो होता था, आजकल तो क्या हो गया, लोगों की शक्ति बढ़ी है घटी है? घटी है ना। तो हम वो बने जो हम हैं, वो स्वीकार करें। एक ये दूसरी चीज, जीवन में सफल होना है तो कभी कभी हम क्या कर लेते, बहुत सारी चीजें एक साथ करना शुरू करते हैं। बाबा ने कहा योग से सब कुछ होगा, सब 3:30 उठेंगे, मैं 2:30 उठ जाती हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि सेवा भी खूब करनी है तो ये भी सेवा कर लूंगा, वो भी सेवा करूंगा, वो भी सेवा करूंगा। फिर बाबा कहते तोड़ भी निभाना है तो लौकिक का भी निभाना है, इनका भी निभाना है, उनका भी निभाना है, सबको भी राजी करना है। सारे टास्क पे एकदम काम करेंगे तो भी क्या होगा? एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। एक भी काम हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सफलता का एक और सूत्र है कि प्रायोरिटी फिक्स करें, सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं कि कौन सी वो चीज है जो मुझे सबसे पहले करनी है, बहुत जरूरी है। कौन सी चीज को सेकंड नंबर पे रखना है, कौन सी चीज को आराम से करना है। तो अगर हम चीजों को व्यवस्थित रूप से करते हैं तो सारी चीजों को न्याय दे पाते हैं। एक दिन आप 2:30 उठ जाएंगे, आपको आदत नहीं है, शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, और फिर दूसरे दिन अगर बीमार हो जाएंगे तो 2-3 दिन सेवा भी छूट जाएगी, सेवा और ही लेनी पड़ जाएगी। तो प्लस होते होते खाता देखेंगे तो लास्ट में क्या होगा? तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, अभी शिलु दीदी बात कर रहे थे ना कछुआ, है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बचपन में सुनी है ना कहानी, धीरे लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। जब हम मल्टीपल चीजों पर काम करने लग जाते हैं, एकदम से जैसे एक्सपोज मिल जाए, एकदम से कुछ हो जाए, ऐसे हम अपनी एनर्जी को बहुत जगह लगाना शुरू करते हैं तो भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। बाबा ने प्रथम नंबर की आत्मा, ब्रह्मा ने आत्मा का पाठ कितने दिनों तक रट रट के पक्का किया। कितनों के उदाहरण है कि वो छोटी छोटी चीजों पर बहुत आराम से काम करते, फिर एक काम और लेते, बहुत देर तक काम करते, फिर एक काम और लेते। ये बहुत अच्छी आदत होती है कि हम प्रायोरिटी बना लें, तो भी जीवन में सफलता होती है। जैसे हमें चार्ट भी लिखना है, हमें जल्दी भी उठना है, हमें सेवाएं भी करनी है, हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है, सब चीज को सोच लें, सेल्फ इंजीनियरिंग करनी है, नहीं तो खुद के भविष्य को बनाने की बात है ना, और कितने जन्मों का। एक जितनी बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, उतना उसमें के सबसे ज्यादा काम उसका बेस बनाने में जाता है, प्लान करने में और बेस तैयार करने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है, बाद में मंजिलें बनने में टाइम नहीं लगता जितना टाइम पहले लगता है कि इसमें बेस तैयार करने में, उसकी प्लानिंग प्रॉपर करने में। एक इंच भी अगर टेढ़ा हो जाता है बिल्डिंग तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, खतरे में आ जाती है, इसलिए बहुत अच्छी प्लानिंग की जाती है। इसी तरह से हमें भी अपने ब्राह्मण जीवन के रूट्स, उसे बहुत अच्छा पहले मजबूत करना है। हमें कोई पहचाने, हमें एक्सपोजर मिले, हमें चांस मिले, हमें स्टेज मिले, हमें वो मिले, हमारा नाम हो, ये सब बाद में होता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बी योर सेल्फ, कि मुझे बन जाना है पक्का योगी, बनने में मेहनत करनी है, अच्छी अमृत वेले की आदत डालनी है। उठ भी गए, नींद भी आ रही है, आनंद भी नहीं आ रहा है, पहले मुझे बहुत अच्छा अमृत वेले की आदत डालनी है। मैं मुरली सुनूं तो एक बार भी मेरी आंख बंद ना हो और मुझे सब बातें याद रहे, छोटी छोटी चीजें पर बेसिक। हम प्रतिदिन कोई ना कोई सेवा करेंगे, हम प्रतिदिन अपनी चेकिंग करेंगे, उसमें नहीं छोड़ेंगे हम कभी भी, ये बेस है। जैसे ABCD जब बच्चों को सिखाते हैं तो एक ही लेटर लिख के और क्या कहते हैं बच्चे इसके ऊपर, घुटो, गुजराती में हमारे बोलते घुटो, बार 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 बार, है ना, ताकि वो बेस है ना, वो पक्का होगा, 1 2 3 4 पक्का होगा तो बाद में वो बहुत सारे मैथ्स और बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर लेगा, लेकिन बेस अगर नहीं हुआ तो प्रायोरिटी से ये फायदा होता है, हम निरंतर प्रगति कर सकते हैं। और एक बात है कि हम जो भी करते हैं उसमें अच्छा लगता है वो करना चाहिए या जो अच्छा है वो करना चाहिए, जिसको कहते हैं जिसकी रिजल्ट अच्छी है वो करना है, जिस रास्ते की मंजिल अच्छी है वो रास्ता कठिन भी हो तो वो पकड़ना है, लेकिन जो रास्ता बड़ा अच्छा लगता है मंजिल का, जैसे आजकल आपस में हम सब मिलते हैं, बाबा का परिवार बहुत बड़ा हो गया है, फिर सोशल मीडिया का भी जमाना है तो सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से कांटेक्ट भी कर लेते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी जगह हम लोग लगे रहते हैं और हमें शुरू में बहुत अच्छा लगता है, अरे एक उसमें तो ए भाई भी जुड़ा हुआ है उस ग्रुप में, तो वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी ये है, वो तो इतने पुराने हैं, उनका तो ये है, उनका तो वो है, हर एक की अच्छा वहां का समाचार, अच्छा वहां का समाचार। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे ब्राह्मणों में संपर्क संबंध में भी बहुत मीठी मीठी बातें होती है, पहले तो सेवा समाचार, फिर पुरुषार्थ की बातें, लेकिन फिर धीरे धीरे कभी कभी क्या हो जाता है, रास्ता बड़ा अच्छा लग रहा है पर वही रास्ते पे क्या शुरुआत हो जाती कभी कभी, अच्छा आपके यहां ऐसा भी होता है, हमारे यहां तो ऐसा होता है, आपके वो ऐसे हैं, हमारे यहां तो ऐसा, ऐसे करके कहीं ना कहीं क्या शुरू हो गया। बाबा कहते हैं उसको सेवा की बातें करते करते सेवाधारियों की बातें शुरू हो जाती है, फिर वही भक्ति मार्ग की तरह आए थे हरि भजन को और टन लगे कपास। कई लोग कथा में जाते हैं सत्संग में और वहां जाकर के भी ध्यान उनका कथा में नहीं रहता है लेकिन किस में रहता है, जो आए हैं ना उनसे बातें करने में, है ना, अच्छा आपके घर में क्या हुआ, उनके घर में क्या, उनके क्या है, उनकी बहू, उनकी बेटी, ये वो होता है ना। तो यहां भी कभी कभी हमारा ध्यान कई सारे संपर्क बनाने से हमारे पुरुषार्थ और जो मुख्य धारा के बदले चला जाता है अनेक व्यर्थ बातों में, जिसको बाबा लीकेज भी कहते हैं। तो ये बड़ा ध्यान हमें रखना है कि अच्छा तो लग रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हूं, लेकिन बहुत सारे लोग तो जन्म जन्म भी मिले थे, उद्धार किसने किया मेरा, किसने किया। बाबा कहते कि अगर किसी का गुण पसंद भी आता है, अगर कोई बहुत अच्छे पुरुषार्थी भी है, तो भी विचार ये करना जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर है। तो मेरा ध्यान लेकिन कहां जाना चाहिए, कभी कभी हम अनेकों के अंदर आजकल व्यस्त हो जा रहे हैं, ये भी हमारा समय हमारी शक्तियां व्यर्थ में चली जाती है। हम किसी के भगत नहीं बनने आए हैं, बाबा ने भी हमें अपना भगत नहीं बनाया, बनाया क्या, बनाया। बाबा मुरली में कभी ये शब्द नहीं यूज करते हैं कि तुम मेरे फॉलोअर हो, मेरे चेले हो, नहीं ना। जब बाबा ने मुझे अपना भगत नहीं बनाया, वारिस बनाने का संकल्प दिया, समान बनाने का संकल्प दिया, तो हम भी किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं चले जाए। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत हम किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं, प्रभाव में चले जाते हैं, वहां भी थोड़ा थोड़ा हमारा लक्ष्य फिर बदल सा जाता है। तो हमें क्या करना है, फोकस रहना है इस ईश्वरीय जीवन में। एक बाबा, जिसको भी कुछ मिला है तो बाबा से मिला है। अच्छा किसी का कुछ ऊपर नीचे अवस्था भी चल रही है तो विचार कीजिए, क्या आप उनके भाग्य विधाता बनोगे, बनोगे। हम किसी का भाग्य बनाएंगे तो फिर हम उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे कि किसी की अवस्था क्यों ऊपर है, क्यों नीचे है, क्या है, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। भक्ति की कथाएं छोड़ी, लेकिन ईश्वरीय परिवार में भी सबकी कथाएं सुनने में इंटरेस्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही भक्ति वाली बात हो जाएगी ना, समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि चाहे बातें चटपटी कितनी भी अच्छी लगे, किसी का संग कितना भी हमें उस समय रमणीक लगे, लेकिन ये विचार करना कि इन बातों को सुनने से क्या मेरा कोई फायदा होगा। अच्छा अगर कोई सुना रहा है उसका मुझे सुनाने से उसका कोई फायदा होगा, किसी की अवस्था कुछ गड़बड़ है, उसने आपको सुनाया, आपने बड़ा ध्यान से सुना, अच्छा बहन जी माता जी ऐसे होता है क्या, आपका ऐसे हुआ। अच्छा मान लीजिए आपने सुन भी लिया, उसको थोड़ी देर लगेगा, मेरा किसी ने सुन तो लिया, लेकिन क्या आप उसका हल करेंगे? नहीं। तो उनका कुछ फायदा हुआ? अच्छा सुनने से आपका कुछ फायदा हुआ? ना उनका फायदा हुआ ना आपका फायदा हुआ, बल्कि आपका भी नुकसान हुआ और उनका भी नुकसान ही हुआ। इसीलिए बाबा कहते सबको जोड़ना है एक बाबा से। इस ईश्वरीय जीवन में ये डाइवर्जन में कभी नहीं जाना है कि हम एक दूसरे की समस्या को सुलझाने में या एक दूसरे की कथा सुनने में या एक दूसरे के जीवन में इंटरफेरेंस करने में जानने में चले जाएं, तो ये जैसे कि बाईपास है या शॉर्ट गलियां ऐसी है जो आज अच्छी भी लगेगी। कभी कभी होता है ना, गूगल भी ऐसा रास्ता बता देता है कि ये शॉर्ट है, और जब हम मुड़ जाते हैं तो आगे चल के वो रास्ता कहीं हम रुक जाते हैं ना, इतना संकड़ा होता है, इतना तकलीफ देता है, फिर यू टर्न भी नहीं मिलता है जल्दी, बहुत तकलीफ होती है। ऐसे ही हम भी ये सब साइड की गलियों में नहीं जाएं तो अच्छा। यहाँ भी बहुत बड़ा संगठन है, कई अलग अलग जगह से आए होंगे, तो यहाँ भी मिलना होता है ना, अच्छा अच्छा ये यहाँ से वहां से। लेकिन इसीलिए दीदी ने क्या कहा, मुख का भी मौन। तो हम ये सब करने नहीं आए कि कौन कहाँ से आया है, कांटेक्ट बनाए, थोड़ा सा नंबर एक्सचेंज करे, थोड़ा सा आगे चल के कुछ दूसरी बार आएंगे तो फायदा होगा, इनकी पहचान उनकी पहचान उनकी पहचान, तो फिर आपका भट्टी का या जो यहाँ हम रियल में जो इस भूमि पर लेने आए हैं ना, वो हम नहीं ले पाएंगे। चौथी चीज एक और जीवन में देखी है कि जीवन में कभी भी कोई भी चीज मुझे आती है, मैंने सीख लिया, मैं इसका मास्टर हो गया, ऐसा समझ के हम थोड़ा सा ही लापरवाह होंगे तो वहीं पर गलती हो जाती है। पता है आपको, जो टफ रास्ते होते हैं, खराब सड़कें होती है, वहां इतने एक्सीडेंट नहीं होते हैं। अधिकतर एक्सीडेंट्स कहां होते हैं, जो बहुत भारी एक्सीडेंट्स आप सुनते हैं कई बार, वो कहां होते हैं, हाईवेज पे होते हैं, जो बहुत अच्छी बनी हुई है सड़कें, 6 लेन भी है, वहां हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है तो स्पीड, और फिर लापरवाही आ जाती है, ध्यान चूक जाता है। तो हम भी इस ईश्वरीय मार्ग में, अब तो हमें सेवा करना आ गया, अब तो हम बाबा के पुराने बच्चे हो गए, अब तो हमारी सब धारणाएं पक्की है, अब तो हम है ही अनन्य में आ गए, अब तो हम इतनी सेवाएं भी करते, अब तो मधुबन में भी हमें सब पहचानते हैं, तो हम बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, हमने ये पद पा लिया, हमने वो पा लिया, हम इस विंग में हैं, हम उस विंग में, आजकल बहुत प्रकार की चीजें हैं, हमारी तो पहचान अब तो बन गई, हम एस्टैब्लिश्ड हो गए, हम जाने माने स्पीकर बन गए, हम जाने माने पद पे आ गए, हम ये हो गए, हम वो गए। यहीं पर शुरुआत हो जाती है कि जरा सा ही कदम लापरवाही का हमें रास्ता भटकने को मजबूर कर देता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी आरी की धार को तेज करते रहना चाहिए। आप कैंची यूज करते हैं, चाकू यूज करते हैं, तो लगातार यूज करने पर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में क्या करना पड़ता है, शार्प करना पड़ता है ना। अगर आप काम ही लेते रहेंगे और शार्प नहीं करेंगे तो वो फिर काम कम देता है, बेकार हो जाता है। ऐसे ही हम कितना भी एक्सपोजर हमें मिले, कितना भी हमें पहचान मिल जाए, हमारा एक स्थापित कोई पद हो जाए, लेकिन हमें स्वयं की धार को तेज करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, और खुद के ऊपर अटेंशन बिल्कुल भी हमारा कम नहीं होना चाहिए। यही हमने दादियों को अंत तक जब परिपक्व अवस्था में थे तो भी उन्हें ये लगता था कि नहीं, आज की मुरली दोबारा मुझे पढ़नी है, पूरी सुननी है। और दादियां हॉस्पिटल में होती थी, अंतिम समय तक भी उन्हें मुरली का बहुत ध्यान होता था, जबकि बहुत बेसिक बात हो गई ना, कोई भी मुरली सुनता है सुनाता है, लेकिन दादियों ने उसको साधारण कभी नहीं लिया। और हम कई भाई बहनों को कभी कभी सेंटर पर हमारे भी देखते हैं, बहन जी आज जल्दी में आज सार सुन लिया था। शाम को पूछो, भाई जी मुरली पूरी सुनी? नहीं दीदी, आज तो है ना बिजी थे ना, आज सार सुन लिया था। भगवान ने सुनाई 4 पेज की मुरली और मैंने पढ़ी 4 पॉइंट, और फिर मैं कहलाती हूं ईश्वरीय विद्यार्थी। क्या मेरी धार शार्प होगी? होता है कभी कभी ऐसा होता है। आज काम करते करते चला रखी थी मुरली यूट्यूब पे, सुनी तो, पर खुद को ही लगता है कैसे सुनी, कैसे सुनी लगता है ना। तो स्वयं पर छोटी छोटी बातों में भी अगर हम ऐसे ध्यान दें, आज अमृत वेले उठे थे पर कल रात को लेट हुआ था ना, तो थोड़ा बेड पे ही बैठ गए थे, गुड मॉर्निंग जरूर किया था बाबा को, लेकिन फिर थोड़ा तुरंत सो गए थे, मतलब नेमिनाथ, बाबा उसको क्या कहते हैं, नेमिनाथ। तो नेमिनाथ की तरह हमने नियम तो निभा लिया, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है कि अमृत वेला ही पूरे दिन का क्या है, फाउंडेशन है। और वो हमने साधारण रीति से कर लिया, थोड़ा सा कर लिया, और फिर पूरा दिन क्या होता है पता है, बाबा ने एक मुरली में कहा था, अमृत वेले अटेंशन से योग अभ्यास न करने पर दिन भर आप मिनटों का काम घंटों में भी नहीं कर पाते हैं, अवस्था नहीं बना पाते। काम तो करेंगे, सेवाएं करेंगे, लेकिन वो खुशी का अनुभव नहीं रहता है। तो जीवन में क्या है, सफलता मिलेगी तब खुशी मिलेगी, या खुशी से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी? दो स्लोगन है, कई कहते हैं सफल हो जाएंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति कहता है खुश रहेंगे तो सफल होंगे, तो ज्यादा अच्छा क्या है? तो वो जो बेस है अगर उसको हमने ध्यान नहीं दिया, होता है चलता है, कभी कभी तो चल जाता है, ऐसे करके खुद को एक्सक्यूज कर देते हैं, दूसरों को तो एक्सक्यूज नहीं करते, लेकिन खुद को कभी कभी हम माफ कर देते हैं, आज तो चलेगा, आज तो क्या है थोड़ा रेस्ट कम हुआ है ना, आज तो चलेगा, बेड पे ही कर लेंगे, आज नहीं होगा, ऐसे खुद ही खुद कर लेते हैं, है ना। तो ये जब हम कर लेते हैं तो हम कभी भी शार्प नहीं हो पाते हैं। इसलिए अपनी कुल्हाड़ी को, अपने शस्त्र को, अपनी बुद्धि को, जिससे हमें माया को काटना है, जिससे हमें सारी संघर्षों का सामना करना है, उसे हमें क्या करना चाहिए, शार्प करते रहना चाहिए। और एक चीज जो सबसे ज्यादा हमारा समय बचाती, शक्तियों को बचाती, वो है सॉफ्ट रहना, अथवा जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिजिलियंस पावर, लचीलापन। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसी डिमांड, वैसा अपने आप को ढाल के बिना डिस्टर्ब हुए चलते रहना। एक बार भी जब हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, संकल्प विकल्पों में जाते हैं, कहीं हम एडजस्ट नहीं हो पाते और वो अंदर एक हार्ड हमारा एटीट्यूड रहता है, कभी कभी होता है, बड़ी दूर से देखिए मधुबन आते हैं, हम बाबा मिलन जब लाइव होता था हम कई बार देखते थे, कितना मुश्किल से घर से निकले, कितनी दूर से आए, अच्छा मधुबन में एंट्री हुई, एकोमोडेशन मिला, छोटी सी बात है, हमारे ग्रुप में से दो लोगों को थोड़ा सा अच्छा एकोमोडेशन मिल गया, मुझे थोड़ा सा तीन पांच लोगों वाला कमरा मिल गया, बस वहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाबा मिलन के दिन किसी को आगे बैठने का चेयर मिल गई और मुझे ढूंढना पड़ा जगह और थोड़ा सा पीछे मिली। बाबा मिलन तो हो रहा है लेकिन मेरे मन में संकल्प क्या चल रहा है, मुझे तो दिया ही नहीं आगे, मुझे तो मिला ही नहीं, मैं तो वहां भी टीवी में देखती हूं, यहां भी बाबा को मैंने, और वो संकल्प वही चल रहा है कि बाबा मिलन नहीं हो रहा है, टीवी देख रही हूं। क्यों भाई, बाबा मिलन हो रहा है ना, पर ये छोटी छोटी बातें क्या कर लेती है, डिस्टर्ब होने की जो हमारी आदत है ना, सामने भगवान बैठा है लेकिन हम खुश नहीं, उस जो शक्ति भरने का टाइम है वो शक्ति नहीं भर, मधुबन में आए हैं, घर से कुछ तो अलग होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं तो वैसा का वैसा कंफर्ट जोन तो नहीं होगा। कईयों को एसी के बिना नींद नहीं आती, नीचे नहीं बैठा जाता होता है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, ऐसी कई छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन जिसने ये सोच लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं लेने आई हूं, जो मैं भरने आई हूं, वो मुझे जो मिल रहा है उससे मेरी बुद्धि रूपी झोली को मुझे भरना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मधुबन से आप स्नेह की भी झोली भर के जाते हो, आप देखना चार दिन में आपको कितना भरपूर स्नेह का अनुभव होता है, ज्ञान की भी झोली भर के जाते हो, शक्तियों की भी झोली भर के जाते हो, सहयोग की भी झोली भर के जाते हो, जाते हैं ना, और अनुभवों की झोली भर के जाते हो। तो देखना लास्ट दिन किसी भी बात के कारण ये झोली भरना मेरा रह तो नहीं गया। कभी कभी होता है मार्केट से वापस आ जाते फिर याद आता क्या लेने गए थे, अरे ये तो रह गया, जो लेने गए थे वो नहीं लिया और दूसरी कई चीजें लेके आ जाते, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। तो हम भी यहां से और कोई अनुभव कि मौसम कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा था, नथिंग, हम क्या लेने आए हैं, ये जो मोस्ट चार्ज्ड भूमि है यहां मेरे इंस्ट्रूमेंट को चार दिन में अगले कई लंबे समय तक चले उतना चार्ज करने में आई हूं, इसलिए और बातें गौण हो जाती है, चाहे भोजन चाहे और कोई सोने में कमरे में कुछ भी, ये सब बातें बहुत पीछे की है। तो हम बहुत ज्यादा ध्यान रखें, जीवन में भी लचीलापन होना चाहिए, ये नहीं तो ये हुआ कोई बात नहीं, वो नहीं तो वो हुआ कोई बात नहीं। बाबा को भी हैदराबाद से कराची, फिर कराची से भारत, कितना शिफ्ट होना पड़ा और कितने सारे बच्चों को लेकर, तो बाबा ने क्या किया, लेकिन हर चैलेंज में हर वो परिस्थिति जो परिवर्तन होती गई उसमें भी क्या किया बाबा ने, बच्चों को भी एकदम भरपूर रखा और स्वयं भी इतना उमंग उत्साह से बाबा आगे रहे कि इन परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुनिया में युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय, बॉर्डर्स पे क्या क्या हो रहा था, लेकिन दादियां तपस्या में इतनी बाबा ने उनको मगन रखा कि इन परिस्थितियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। हम कई बार दादियों से पूछते थे, आपको कुछ भी याद नहीं है कि भारत पाकिस्तान का जब ये हो रहा था, हम तो इतना सुनते हैं कि नंगी तलवारें लेके घूमते थे लोग, खून बहता था, कुछ भी नहीं पता, नहीं तो कितना कुछ ट्रॉमा हो जाता, कितना इफेक्ट आ जाता, और हमें तो अभी आगे चलकर न जाने कितने अंतिम समय के दृश्य देखने हैं। जो कुछ भी आज मेरे पास है वो सब नहीं रहेगा, जितने मेरे साथी है, सहयोगी है, वेल विशर्स है वो नहीं रहेंगे, धन भी हो सकता है नहीं रहेगा, अचानक शरीर को भी क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे अपनी स्थिति को हर परिस्थिति में लचीला बना के रखना है, सहलें कहलें पर टूटे नहीं। समस्याएं बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए आती है। हर वो बात मेरे जीवन में आएगी, मैं उससे और नए तरीके से जीना सीखूंगी। कभी नहीं लगे कि लो सोचा क्या था, हो क्या गया, अब कैसे पुरुषार्थ करेंगे, अब क्या हो सकता है, देखो ना ये साथी बिछड़ गया, देखो ना ये हो गया, देखो ना अब शरीर ऐसा हो गया, देखो ना वो हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो करना है वो मेरी आत्मा की यात्रा है और वो सदा चलती ही रहेगी। इसलिए जिस हाल में तू रखेगा, हर हाल में हम रहेंगे खुश राजी। ऐसा अपने आप को बाबा से कमिट करे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम जो ये डिस्टर्ब होने की आदत होती है जीवन में, बहुत बार नुकसान होते हैं उसके, किसी भी कारण से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हमारा हाथ पकड़ा है सर्वसमर्थ ने और हमें उसी का सहारा लेके चलना है। और कोई सहारे जो आज हैं भी, पर ये कल्पना कर लीजिए वो शायद ना भी रहे, तो भी मेरा पुरुषार्थ, मेरी यात्रा, मेरा बाबा के संग जो लिया हुआ वायदा है वो तो जरूर मुझे निभाना ही है। तो कभी भी शायद हमें असफलता नहीं मिलेगी। बाकी तो इन चार दिनों में हम और भी भरपूर होकर जाएंगे। और कल सुबह जैसे कहा, विशेष कल पिता के रूप में आत्माभिमानी दिवस है, पिता के रूप में बाबा से कल दिन में पत्र भी लिखना है, तो सुबह से वो वार्तालाप बाबा से कीजिए कि हम क्या बाबा से आज लिखेंगे, बाबा को क्या कहेंगे, और शाम या कल बाबा से उसका उत्तर भी हमें अवश्य मिलेगा। ओम शांति।
प्रभु।